दिन भर तारीख 12 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार में हूं मोहनलाल शर्मा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में मां बाप राजेश और नुपुर तलवार को दिया संदेह का लाभ, किया बरी।
केस सजा करने के फैसले को निरस्त करते हुए दोनों अपील को मंजूर कर दिए और आरुषि के माता पिता पे उनको फोर्थ विद रिलीज करने का आदेश।
बताएंगे कि ये हत्याकांड आखिरकार इतना उलझा और पेचीदा क्यों है। फलस्तीनी संगठन हमास ने किया अपने प्रतिद्वंदी समूह फतह से समझौता करने का फैसला।
This is a good development. It's positive. It means that we have the beginning of the end of the Palestinian.
कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया है। मामले से जुड़े वकील ए के निगम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति की अपील मंजूर कर ली है। तलवार दंपति फिलहाल गाजियाबाद स्थित दासना जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। डेंटिस्ट राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या 15 और 16 मई 2008 की रात नोएडा में उनके घर पर हो गई थी। चुनाव आयोग ने हिमाचल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं जहां 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में सभी 7,521 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट वाली वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि गुजरात में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन ये चुनाव 18 दिसंबर से पहले ही करा लिए जाएंगे। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल और गुजरात में साथ में चुनाव के सवाल पर चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने कहा।
नहीं, आपने जो दो प्रश्न पूछे उसमें बताइए कि आपने कहा कि वो इकट्ठे होते हैं हिमाचल गुजरात, 2012 और 2007 में इकट्ठे चुनाव अलग अलग ही हुए थे, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट अलग हुआ था। लेकिन अगर आप 2002 की भी बात देखेंगे तो उसमें गुजरात में तब सिंगल फेज में ही इलेक्शन हुआ था और गुजरात में इलेक्शन 2002 में हुआ था 12 दिसंबर 2002, काउंटिंग हुई थी 15 दिसंबर 2002 को। हिमाचल प्रदेश में 2002 में इलेक्शन नहीं हुआ, वहां पर इलेक्शन हुआ था 26 फरवरी 2003 और उसकी काउंटिंग हुई थी 1 मार्च 2003।
ये थे अचल कुमार ज्योति, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में एक अमरीकी सेना के कमांडर ने बीबीसी से कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का से आईएस चरमपंथियों को सुरक्षित निकलने नहीं दिया जाएगा। जनरल जिम ग्लिन ने कहा कि अगर रक्का से आईएस चरमपंथियों को सुरक्षित निकलने दिया गया तो बाकी शहरों में दिक्कत खड़ी होगी। रक्का में स्थानीय नेता फिलहाल आईएस के साथ वहां कथित तौर पर फंसे 5,000 से ज्यादा लोगों को मुक्त कराने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आईएस रक्का से आम लोगों को छोड़ने के बदले में अपने लड़ाकों के लिए शहर से निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता मांग सकते हैं। माना जा रहा है कि रक्का में करीब 400 आईएस चरमपंथी अब भी मौजूद हैं। कैटालोनिया की आज़ादी के को लेकर छिड़े विवाद के बीच स्पेन के महाराज और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने मैड्रिड में एक परेड में हिस्सा लिया है। ये परेड स्पेन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित की गई थी। स्पेन से आज़ादी के लिए कैटालोनिया में जन्म संग्रह कराया गया था जिसमें आज़ादी के पक्ष में वोट पड़े और इसके बाद स्पेन में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। स्पेन ने कैटालोनिया की सरकार को 5 दिन के भीतर आज़ादी को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मैड्रिड में हुई इस परेड में बड़ी संख्या में लोग झंडे लहराते हुए नजर आए। इस परेड को स्पेन की एकता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक एक अमरीकी परिवार को अफगान तालिबान की कैद से छुड़ाया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि अमरीकी खुफिया अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक तालिबान के बंधक अमरीकी परिवार को रिहा कराया गया है। सेना के बयान में कहा गया है कि एक कनाडाई शख्स, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को साल 2012 में बंधक बनाया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। नौ साल पहले नोएडा में 14 साल की एक बच्ची आरुषि की हत्या की खबर ने सबको झकझोर दिया था। हत्या सिर्फ आरुषि की नहीं बल्कि उनके घर पर काम करने वाले हेमराज की भी हुई थी। बेटी की हत्या का आरोप उनके माता पिता पर लगा। हत्याकांड मामले में राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर कभी जेल के भीतर रहे तो कभी बाहर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरुषि के माता पिता को इस हत्याकांड के आरोप से बरी कर दिया। नवंबर 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई के सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए कहा कि तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। पूरी जानकारी के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
16 मई 2008 को डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार की 14 वर्षीय इकलौती बेटी आरुषि तलवार की लाश नोएडा स्थित उनके घर में मिली थी। जघन्य तरीके से की गई हत्या के लिए पहले घर के नौकर हेमराज पर शक हुआ, लेकिन अगले दिन उसकी लाश भी घर की छत पर मिली। बेहद पेचीदे इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 3 साल पहले इन दोनों हत्याओं के लिए आरुषि के माता पिता यानी तलवार दंपति को ही दोषी मानते हुए चार्जशीट तैयार की और फिर विशेष अदालत ने उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन तलवार दंपति ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आज तलवार दंपति को इस मामले में बरी कर दिया। तलवार दंपति के वकील दिलीप कुमार ने मीडिया को बताया,
सजा करने के फैसले को निरस्त करते हुए दोनों अपील को मंजूर कर दिए और आरुषि के माता पिता थे उनको, तलवार कपल्स जो थे उनको फोर्थ विद रिलीज करने का आदेश, बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य इस तरह के नहीं पाए गए कि उनकी गिल्ट को अदालत, जो कि निचली अदालत ने गलती की थी, उसको अपहोल्ड कर सके।
दिलीप कुमार के मुताबिक हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि सीबीआई के सबूत ठोस आधार पर नहीं है और संदेह का लाभ तलवार दंपति को मिलना चाहिए। डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार फिलहाल गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं और इस फैसले के बाद अब दोनों जल्द ही रिहा हो जाएंगे। हालांकि सीबीआई के वकीलों का कहना है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सीबीआई के वकील अनुराग खन्ना,
अब सीबीआई के पास एक ऑप्शन है कि सीबीआई माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल कर सकती है। जब तक उस अपील पर कोई आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश मान्य होगा और तलवार दंपत्ति पूर्ण रूप से दोषमुक्त माने जाएंगे। सीबीआई कोर्ट का फैसला पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अभी फैसले की पूरी कॉपी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है, केवल ऑपरेटिव पोर्शन जो माननीय न्यायालय के आदेश की अंतिम 6 लाइन है वो अपने आदेश में न्यायालय ने कोर्ट में डिलीवर किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई कोर्ट का जो फैसला था लाइफ इंप्रिजनमेंट का उसको गलत मानते हुए सेट असाइड किया है और उनको पूर्ण रूप से दोषमुक्त माना है।
आरुषि और हेमराज की हत्या के 5 दिन बाद नोएडा पुलिस ने आरुषि के माता पिता को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया था कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद दोनों की हत्या कर दी। ये मामला उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा। बाद में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से एक ओर जहां सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, वहीं हत्याकांड की गुत्थी भी और उलझ गई है। तलवार दंपति को हाईकोर्ट ने बरी भले ही कर दिया है, लेकिन शुरुआती सवाल अभी भी बना हुआ है कि फिर आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या किसने की। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
जैसा कि आपने सुना कि आरुषि हत्याकांड एक ऐसा मामला है जो कि बेहद पेचीदा और उलझा है। घटना के बाद जैसे जैसे दिन बीतते रहे ये और उलझता रहा। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने शुरू से ही इस केस पर नजर रखी है जब से ये शुरू हुआ था। तो विनीत, सबसे पहले ये बताएं कि इस केस के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से।
देखिए, 16 मई 2008 को दिल्ली से सटा नोएडा में जलवायु विहार का इलाका है जहां पे एक उस घर में आरुषि 14 साल की बच्ची है, उनका शव मिला। सबसे पहले शक गया हेमराज पर, जो उनके घर में काम करते थे, डोमेस्टिक हेल्प थे। हेमराज का शव भी
एक दिन बाद
मिला घर की छत पर। अब फिर पुलिस ने उसकी जांच करनी शुरू की। इस दौरान पूरा मीडिया में मामला छाया रहा। पुलिस की जांच करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि जो आरुषि थी वो हेमराज के साथ कथित तौर पर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी और गुस्से में आकर आरुषि के पिता राजेश तलवार ने ये घटना अंजाम दी। इस पर बहुत हंगामा हुआ, सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में कोई मतलब उनका कहना था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई स्टेट डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और उस पर उन्होंने कहा क्लोजर रिपोर्ट की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम इशारा उन्होंने कहा कि राजेश तलवार की तरफ किया। अदालत ने
क्लोजर रिपोर्ट फाइल की।
अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। मामले की फिर जांच हुई और उसके बाद से 2013 नवंबर में दोनों माँ बाप को कन्विक्ट किया गया अदालत की तरफ से।
और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही थी उस दरमियान तलवार दंपत्ति उन्होंने कहा कि नहीं, क्लोजर रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए और जांच आगे होनी चाहिए।
मुझे याद है जब ये 2013 में उन्हें कन्विक्ट किया गया था मोहनलाल जी, तो मैं कुछ घंटे पहले ही उनके साथ मेरी एक घंटे लंबी बातचीत हुई थी उनके घर पे ही। मुझे आज भी याद है कि बहुत दुखी थे जिस तरह से पूरे मामले में उनकी पर्सनल लाइफ को घसीटा गया, आरुषि की पर्सनल लाइफ को घसीटा गया। उनका कहना था मीडिया का जो रोल था उस पर वो काफ़ी उनकी नाराज़गी थी। और आज जो फैसला आया है हाई कोर्ट का उस पर बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है
अगर वो चैलेंज होगा तो।
बिल्कुल
विनीत, थोड़ा सा ये समझाइए कि ये मामला इतना पेचीदा और गुत्थियों से उलझा हुआ क्यों है, जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा।
दो तीन फैक्टर्स हैं मोहनलाल जी। एक तो सबसे पहले जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो मीडिया और आम लोग जो पूरे घुसे घर में जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, तो आरोप लगे सबसे पहले पुलिस के कि जब जो फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर ये ऐसी जो हत्याएं होती हैं और हत्या के जो क्लूज होते हैं वो फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर पुलिस
तार की जोड़े जाते हैं,
तार जोड़े जाते हैं। मीडिया आम लोग जब छत में घर में ऊपर से कैमरा लेकर, तो फिर एविडेंस पे असर पड़ता है। तो जिस तरह से एविडेंस पर सवाल उठे, अब दोनों पार्टीज अपनी तरफ से दोनों पक्ष जो है सवाल उठा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस भी, क्या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की गई, जिस तरह से पुलिस ने जांच की उस पर सवाल उठे, क्या लोगों ने अपना मन पहले ही बना लिया था कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो माँ बाप के अलावा और कौन कर सकता है, क्योंकि अगर घर बंद है, घर से बाहर आया, बाहर से या तो कोई बाहर से आया है या तो अंदर ही घटना अंजाम ही। अब घर से कोई बाहर आया नहीं और लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि आपके आपके रूम के बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप सोते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, ये माँ बाप पे आरोप था। माँ बाप का कहना था कि नहीं, कोई बाहर से आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। और जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जो एविडेंस पे उस पर सवाल उठे, तो इसलिए लोगों के अपने, और जिस तरह से पुलिस का आर्ग्यूमेंट था कि क्या हेमराज के कथित तौर पर संबंध थे, एक छोटी सी बच्ची के कैरेक्टर पर इस तरह से सवाल उठाना, उनकी उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाना, तो इसी कारण से ये थोड़ा मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी रहा और आज भी सवाल उस पर जारी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे। तो जैसा कि आपने सुना कि इस मामले में जांच के दौरान बहुत से मोड़ आते रहे, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, फिर सीबीआई की जांच, हर बार एक नई थ्योरी। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने आरुषि हत्या मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो तलवार दंपत्ति ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नए सिरे से जाँच की मांग की। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद हमारी सहयोगी प्रतीक्षा घिल्डियाल ने तलवार दंपति से बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो में बात की थी और ये बात की थी 2010 में। उस बातचीत के अंश सुनिए।
राजेश और नुपुर, आप आरुषि के माता पिता हैं, जाहिर है आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे, शायद आपसे बेहतर बहुत कम ही लोग हों जो जानते हों, तो आपकी क्या थ्योरी है इस पूरे मामले पे, आपको क्या किसी पे शक है?
देखिए, हम तो बिल्कुल एक हैप्पी नॉर्मल फैमिली थे। आरुषि हमारे लिए जान से ज़्यादा प्यारी थी, हमके तो विश्वास ही नहीं हो कि हमारे घर में ऐसी चीज़ हो गई। हम भगवान को आज तक पूछते हैं कि भगवान हम जैसे इतनी हैप्पी और नॉर्मल फैमिली के बीच में ऐसा हादसा कैसे हो गया, आरुषि इस तरीके से कैसे चली गई हमारे ज़िंदगी से। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, ये री इन्वेस्टिगेशन हो और किसी तरीके से पता चले और हमें भी क्लोजर मिले कि क्या हुआ है इस बात का।
ये पूछना चाहूँगी राजेश की, इस पूरे कांड से आपकी ज़िंदगी कितनी प्रभावित हुई है?
देखिए, किसी के ऊपर भी आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाओ, और आप किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ, छोटी सी चीज़ का भी लगाओ, वो भी आदमी सॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए हैं लोगों ने और किस तरीके से मैं जी रहा हूँ और किस तरीके से मैं फेस कर रहा हूँ, ये मुझे ही मालूम है। सिर्फ यही एक मन में इच्छा है कि बस जिसने ये करा है अब वो ऐसे नहीं जाए, बच के नहीं निकले, उसी बेसिस पे हम जिए जा रहे हैं।
आपको थोड़ा सा भी कुछ शक है कि इस हत्या के पीछे क्या मकसद हो सकता है?
मैं बिल्कुल नहीं सोच पा सकती इसके बारे में। अगर मुझे कुछ भी शक होता, मुझे कुछ इंडिकेशन होती, तो आज यहाँ बैठ के मैं अपने डिफेंस में इंटरव्यूज़ नहीं दे रही होती, फिर मैं शायद इस केस को आगे ले गई होती इन द राइट डायरेक्शन।
आप सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, सीबीआई का इस केस को हल ना कर पाना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि सीबीआई से इस केस को इसलिए भी नहीं सॉल्व कर पाई क्योंकि हत्या के काफ़ी दिनों बाद सीबीआई को ये केस सौंपा गया, तो इस बीच एविडेंस टैम्पर हो गया, सबूत नहीं मिले। आप लोगों की क्या थ्योरी है, क्यों नहीं कर पाई सीबीआई?
ये बात तो है, इतनी बात तो एक्सेप्ट करी जा सकती है कि 15 दिन के बाद सीबीआई और पुलिस ने जो इनिशियल वॉचिंग अप करी उसके बाद पुलिस ने शायद काफ़ी कुछ एविडेंस इनको दिया नहीं है, ये सब तो इनका जो भी मामला था, मगर उस सबके बावजूद भी तो जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं तब से तीनों जना कि अभी भी उनके पास कुछ ऐसे एग्जिबिट्स है, अभी भी उनके पास है, उनके पास एक पॉसिबिलिटी है ये केस सॉल्व करने की टच डीएनए के साथ, तो वो तो बहुत ज़रूरी इम्पेरेटिव है उनके लिए लेना। ये तो आप अगर आप टच डीएनए में थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप खुद ही देख लेंगे कि इसमें तो यूके, यूएस और कनाडा और बहुत जगह पे तो 20-20 साल पुराने केसेस उन्होंने खोल के री इन्वेस्टिगेट करे हैं, जब बाकी दुनिया इतनी आगे चली गई इन्वेस्टिगेशन में, तो आरुषि एंड हेमराज एंड ऑल ऑफ अस डिजर्व एट लीस्ट दिस मच।
हेमराज के जाने का भी उतना ही दुख है आपको?
आप उसको भी तो जस्टिस नहीं मिली ना आरुषि के साथ साथ।
ये जानना चाहूँगी क्योंकि बार बार ये बात उठती रहती है और इस पे काफ़ी सवाल उठते हैं, वो ये कि दोनों पे बहुत ही प्रिसिशन वाले सर्जिकल वूंड्स पाए गए, तो आपके हिसाब से कौन आपके घर में एक्सेस करके इस तरह के वूंड्स उन पे इन्फ्लिक्ट कर सकता था?
देखिए, ये अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग जो बीसीबीआई रिपोर्ट में भी लिखी है, क्योंकि ये आप देखो तो एक तरफ से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये खुखरी हो सकती है, ये भी सीबीआई रिपोर्ट नहीं लिखा है और ये भी एक्सपर्ट्स नहीं लिखा है, और एक तरफ से इस तरीके का ये कहते हैं जो कि पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने बोला है। अब हम किसको माने ये चीज़?
कहीं पर आपको किसी भी बात का रिग्रेट है या आपको लगता है कहीं पर कुछ चूक हुई आरुषि की सुरक्षा को लेकर?
देखिए, हमारी ज़िंदगी तो बदल गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहना चाहती और कुछ कह नहीं सकती हूँ। द फैक्ट इज़ दैट वी हैव लॉस्ट आवर चाइल्ड एंड फॉर अस लिविंग हैज़ बिकम इम्पॉसिबल एंड डिफ़िकल्ट, वी आर सफरिंग, वी आर डाइंग एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से।
क्या कुछ अलग हो सकता था उस रात?
मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाके नहीं सोचना चाहती हूँ, आई वुड रादर जस्ट लेट इट बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
राजेश, क्या आपको लगता है कि आरुषि और हेमराज को कभी इंसाफ मिलेगा?
देखिए, मेरे ज़िंदगी का मकसद यही है और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे में लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता रहूँगा और इस इंसाफ को लेके ही रहूँगा अगर जब तक मैं जिंदा हूँ।
प्रतीक्षा गिल्डियाल बात कर रही थी आरुषि दंपत्ति से, और ये 2010 में की गई बातचीत है, और इस बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2012 को उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय की गई इस बातचीत में और आज के फैसले के बाद जो स्थिति है, गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है कि आखिरकार आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। कार्यक्रम में अब आपको बताते हैं कि कल यानी कि शनिवार को, माफ कीजिएगा, बीबीसी इंडिया बोल में किस विषय पर होगी चर्चा।
क्या दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाने से प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यही है इस बार इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 14 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की सभा दिन भर। फलस्तीनी संगठन हमास ने अपने प्रतिद्वंदी समूह फतह से समझौता करने का फैसला किया है, और इसके साथ ही दोनों संगठनों के बीच दशकों से चली आ रही खूनी जंग खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं। इस समझौते का ब्यौरा मिस्र की राजधानी काहिरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाना है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए पायल भुयन से।
हमास और फतह संगठन लंबे अरसे से एक दूसरे के खिलाफ हिंसक संघर्ष में उलझते रहे हैं। इसी वजह से गाजा पट्टी पर पश्चिमी तट के फलस्तीनी इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग प्रशासन के तहत रहते हैं। सन 2007 में दोनों संगठनों के बीच खूनी झड़पें फूट पड़ी थी। अब समझौते पर सहमति तो हो गई है, पर प्रशासन के ढांचे के बारे में बहुत जानकारी मौजूद नहीं है। फलस्तीनी प्रशासन के पूर्व सांसद मुस्तफा बरगोती ने बीबीसी को बताया, ये समझौता गाजा पट्टी के प्रशासन के स्वरूप तय करने तक सीमित हो सकता है।
दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, इट्स पॉजिटिव, इट मींस दैट वी हैव द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पैलेस्टिनियन इंटरनल
यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन के अंदरूनी झगड़े के अंत की शुरुआत हो गई है और यहाँ से फिलिस्तीनी नेतृत्व के एकजुट होने की राह आसान होगी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। सिर्फ हमारा खोया हुआ अंदरूनी लोकतंत्र हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में शांति स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि अब फिलिस्तीनी एकजुट होंगे और उनकी एक आवाज़ होगी।
ये थे फिलिस्तीनी प्रशासन के पूर्व सांसद मुस्तफा बरगोती के शब्द। हमास और फतेह के बीच समझौते के बारे में हमास प्रवक्ता समी अबू जहूरी ने कहा कि काहिरा में काफी गंभीरता के साथ चर्चा की गई। पिछले महीने हमास ने यह आश्वासन दिया था कि वो गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाली समिति को खत्म कर उसकी बागडोर वेस्ट बैंक को चला रहे फतेह समूह को दे देगा। फलस्तीन में 2007 में हुए चुनाव में हमास की जीत हुई थी, जिसके बाद उसने जबरन फतेह समूह को गाजा पट्टी से बाहर निकालकर प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। गाजा पट्टी का प्रशासन चलाने वाली समिति को भंग करना फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख मोहम्मद अब्बास की प्रमुख मांग थी। फलस्तीनी प्रशासन में फतह संगठन का बोलबाला है और यही पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। फलस्तीन के प्रधानमंत्री रमी हमदुल्ला ने उस वक्त गाजा पट्टी का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी प्राधिकरण को गाजा के प्रशासनिक मामलों और सुरक्षा जिम्मेदारियों पर नियंत्रण लेना शुरू करना होगा। इसराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और उसने साफ शब्दों में ये बात कही है कि वो फलस्तीनी प्रशासन से तब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक इसमें हमास के लोग शामिल रहेंगे। अमरीका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने हमास और कुछ मामलों में हमास की मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।
फलस्तीनी संगठन हमास ने किया अपने प्रतिद्वंदी समूह फतह से समझौता करने का फैसला। और कार्यक्रम में अब वक्त है आपकी भेजी हुई चिट्ठियों को पढ़ने का।
आपकी राय, नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ इंदु पांडे, मेरा भी नमस्कार।
आज इतनी बुझी बुझी क्यों हैं इंदु जी आप?
बिल्कुल नहीं, आज तो मंडे भी नहीं आ गई हंसी।
अच्छा,
तो चलिए चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला मेल हम लेते हैं, ये सैन एंटोनियो अमेरिका से ईमेल आया है हमारे पास। लिखने वाले हैं पंकज यादव, लिखते हैं कि इन दिनों बीबीसी का कोई भी कार्यक्रम महिलाएं प्रस्तुत नहीं करती। मुझे मालूम है कि बीबीसी में हरिता और इंदु आदि महिलाएं काम करती हैं, लेकिन कभी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करती।
ये देखिए,
मुझे लगता है शायद इसी वजह से मैं बुझी बुझी थी
ना, कि आप कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करती हैं। हमने तो आपको कई बार कहा है और आपका स्वागत है कि आप कार्यक्रम प्रस्तुत करें, लेकिन मैं अब वो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ कि सबकी अपनी अपनी व्यस्त लाइफ होती है और काम की अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं।
जी,
इस वजह से हमारी जो महिला साथी हैं वो कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं, लेकिन इस स्थिति में बदलाव आने वाला है। आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारी हमारी नई जो साथी यहाँ पर आई हैं बीबीसी हिंदी सर्विस में, वो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। इंदु जी को तो मैं खींच के ले आता हूँ चिट्ठियाँ प्रस्तुत करने के लिए। दरअसल इनकी जिम्मेदारी एफएम की है, तो एफएम में आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप सिलीगुड़ी में रहते हो, वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो वहाँ हमारे जो पार्टनर रेडियो स्टेशन है, रेडियो मिष्टी है, और देश के दूसरे कोने में है, वहाँ इंदु पांडे की आवाज़ आप बाकायदा पूरे कार्यक्रमों में सुन सकते हैं। लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान दिलाने के लिए यादव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सात समंदर पार रहते हैं फिर भी हमें सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और दूसरा मेल है, अश्विनी झा का, लिखते हैं कि मैं नेपाली हूं और बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम रोजाना सुनता हूं। मेरे दादाजी सहित घर के चार लोग बीबीसी सुनते हैं। इन्होंने रेहान फजल और राजेश जोशी का जिक्र किया है और लिखा है कि आप अपने कार्यक्रम में विज्ञान के बारे में जानकारी जरूर दें।
मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है कि अमेरिका से लेकर के नेपाल तक
जी,
जहां जहां हिंदी भाषी लोग हैं वहां वहां हमें वो सुनते हैं, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ जाता है। झा जी, आप सुनते रहिए, अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कीजिए, उनसे भी कहिए चिट्ठी लिखें, और धन्यवाद के अलावा हमारे पास कहने को तो और कुछ नहीं है, बस अपना सहयोग बनाए रखें।
और अब चलते हैं कोलगी सिद्धापुर जिला उत्तर कन्नड़ से राघवेंद्र,
कर्नाटका।
तो यहाँ से राघवेंद्र हेगड़े ने लिखा है कि अभी अभी अमिताभ और जया बच्चन की पुरानी भेंटवार्ता सुनकर बहुत खुशी हुई।
इनको खुशी इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने पुरानी जो 30 साल 35 साल पहले या शायद उससे भी ज़्यादा पहले जब ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था वो इन्होंने सुना है, क्योंकि पूरी चिट्ठी शायद आप नहीं पढ़ पा रही हैं, मैंने पढ़ ली है।
नहीं, मैं सोचा आप उसका जिक्र करें क्योंकि नहीं,
बहुत
सबको
बहुत
पता
धन्यवाद
चलेगा।
देखिए, उत्तर कन्नड़ा से लिख रहे हैं, हम बीबीसी के खजाने की चीज़ें बीच बीच में आप तक पहुँचाते रहते हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि 1971, 72 या 73 में कब अमिताभ बच्चन से वो बातचीत हुई होगी, हम आज भी उसका चर्चा कर रहे हैं। जब बच्चन साहब 75 साल के हो गए हैं।
और ये है राजकुमार सोनी, लिखते हैं कि बीबीसी न्यूज थर्ड क्लास हो गई
ये
है।
ये देखिए आया राजकुमार सोनी साहब नाराज हैं
जी, बेतुकी खबरें देना और बीजेपी की बुराई करना और नकारात्मक सोच।
देखिए एक राजनीतिक पार्टी के बारे में अगर आप कहेंगे कि उसकी बुराई की है या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में आप कहेंगे कि उसकी हम तरफदारी कर रहे हैं, तब फिर तो ये हमारे साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आप आलोचना कीजिए, उदाहरण देके कीजिए, हम आपकी आलोचना को सरमाथे रखेंगे और दुरुस्त करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी, खास राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, ये तो भाई थोड़ा ज्यादती नहीं है।
और अब बात सुनते हैं इसहाक की, जिन्होंने मिसिसाउगा कनाडा से लिखा है कि उन्हें राजेश प्रियदर्शी का ब्लॉग क्या मुसलमानों को रहमदिली की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए बहुत पसंद आया।
ये कनाडा से हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं और पाठक हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राजेश प्रियदर्शी का वो ब्लॉग पसंद आया, राजेश प्रियदर्शी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, तमाम चीज़ों पर आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा।
और डॉक्टर लक्ष्मण झा हैं साउंड हेल्थ क्लिनिक दुमका झारखंड से, लिखते हैं कि बीबीसी दुनिया ने हमारा दिल जीत लिया, हमें ये अंदाज़ा न था कि आप हमें अद्भुत सौगात देंगे।
ये हमारे बीबीसी हिंदी के जो टेलीविजन का कार्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम बीबीसी दुनिया है, आधे घंटे का ये कार्यक्रम हमने प्रसारित करना शुरू किया है, तो इसे देखें और इसके बारे में भी अपनी राय रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि बीबीसी का ये कार्यक्रम कब और कहां आप सुन सकते हैं।
और नितिन कुमार श्रीवास्तव, आशीष कुमार पाल कोटवा धाम पारिजात बाराबंकी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी पर वात्सल्य राय द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया जो बहुत अच्छा लगा, गुजरात की खबर अच्छी लगी, अमित शाह के बेटे जय शाह की खबर बहुत पसंद आई, बीबीसी हिंदी में नमस्कार भारत और भर की सभा हर रोज हम सुनते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बाराबंकी के नौजवान इस कार्यक्रम को हमारे सुनते रहे और चिट्ठी लिखते रहे। लेकिन चलते चलते मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं जो आई है भावनगर सौराष्ट्र गुजरात से, लिखने वाले हैं प्रवीण चंद्र पी वाघेला और इन्होंने गुजराती स्टाइल में हिंदी लिखी है बहुत ही सुंदर लेख में। लिखते हैं मेरी उम्र 62 साल की है, मैं 10 साल का था तब से आज तक बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर सुबह और शाम हिंदी में प्रसारण होता है, वक्त मिलने पर सुनता हूँ, जब 10 साल के थे तब से सुनते आ रहे हैं और 62 साल के पिछले 52 साल से सुन रहे हैं। प्रवीण चंद्र जी आप लिखते रहें, लेकिन ये पहली चिट्ठी लिखी है, मुझे दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार होगा जिसमें आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे। फिलहाल चलते चलते पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां सुन ली और अब कार्यक्रम में हम खेल की खबरें भी सुन लेते हैं। राखी शर्मा मौजूद है, राखी क्या है खेल की खबरें?
सबसे पहले तो फीफा अंडर 17 विश्व कप, जिसमें अब से कुछ ही देर में भारत का सामना अपने से काफी मजबूत टीम घाना से है। भारतीय टीम के लिए मुकाबला किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है, अगर अंतिम 16 में भारत को जगह बनानी है तो दो बार की चैंपियन घाना को उसे इस मैच में बड़े अंतर से हराना होगा। पहले दो मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में अमेरिका ने भारत को 3-0 से मात दी थी, जबकि कोलंबिया ने मेजबान टीम को बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से हराया था। लगातार दो हार के बाद अब भारतीय टीम का अंतिम 16 में पहुंचने का समीकरण घाना के खिलाफ होने वाले मैच पर आकर रुक गया है। अब उसे घाना को बड़े अंतर से मात देने के अलावा ये भी उम्मीद करनी होगी कि आज जो दूसरा मैच है जिसमें अमेरिकी टीम और कोलंबिया आमने सामने हैं, उसमें भी अमेरिकी टीम कोलंबिया को बड़े अंतर से हरा दे। और वहीं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आज घोषणा कर दी कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नवम्बर को होने वाले T20 मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। साथ ही उन्होंने होम ग्राउंड दिल्ली में खेले जाने वाले ये मैच होगा, ये उनका अंतिम विदाई मैच भी होगा।
तो मतलब कुल मिलाकर एक और संन्यास की बारी आज आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने हिमाचल विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होंगे। सीरिया में एक अमरीकी सैनिक कमांडर ने बताया कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रक्का से IS चरमपंथियों को सुरक्षित निकलने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान और रवि कुमार। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है, जिसमें नित नई खबरें आ रही हैं। विशेष रिपोर्टों के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, जो कि है 24 घंटे आपके साथ। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।